अर्लियर टाइम्स पे लोगों लोग ज़्यादा प्रोसेस करते थे इन्फॉर्मेशन को, और आज के टाइम पे नहीं होता. ऑल दो हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहीं ज़्यादा है, इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारे जो जहन है वो कमज़ोर हो गए हैं.
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिलती है ना कि जो सबसे बेहतरीन अमल है जो कि छोटे हों बेशक लेकिन कंटिन्यूअस हो.
हकीकत में चेंज जो है वो एक प्रोसेस है, एक लाइफस्टाइल है. हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं कि अगर मैं आज कुछ बदलता हूँ तो वो फौरन से उसके रिजल्ट्स मुझे मिले, जो कि होता नहीं है.
स्कूल में सबसे बुरे किस सब्जेक्ट में थे आप?
उर्दू.
मैं भी उर्दू में.
मैं मशाय के साथ क्लास में पढ़ा था, उन्होंने बोला तो नया नया गया था तो उन्होंने लिखने के लिए बोला, तो अब वो उन्होंने उनका स्टाइल ये था कि उन्होंने बोला था कि मैं आपको डिक्टेट कराऊंगा अपने लिखना है. तो मैं लिख मैंने बोला चले यार लिखना यार, वो जर्नल उन्होंने लिख के आते थे वो पूरा लिखवा. तो नहफ की तारीफ बताई उन्होंने, तो जो है ना कि जो इसम फेल और हर बने तो इससे जो है ना काली माँ बनता है. और मैं लिख रहा हूँ तेजी से, मैंने काली माँ काली माँ कहाँ से आ गया यहाँ पे? मैंने बोला यार बच्ची टाइम नहीं है लिख बस. मैंने काली माँ पता चला वो कह रहे थे काली माँ.
मोबाइल साइलेंट करने
स्टार्ट हो गई है. आप लोग किताबों की कुछ बात कर रहे थे.
मैं कह रहा था 5 हैबिट ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल पढ़ी
है, जो कि 7 थी,
जो कि 7 थी.
लेकिन आपने असल में 5 तक पढ़ी थी.
मैंने 5 तक पढ़ी थी.
आपकी हैबिट ही खत्म हो गई 5 के बाद.
वैसे आप कितनी बुक्स पढ़ते हैं
यार आजकल? नॉट मच बिकॉज रीडिंग इज इन पोर्शंस. बट ये कि पहले तो काफ़ी किताबों की हैबिट थी और अभी भी खरीदता हूँ. हमें एक आई थिंक इट्स अ जापनीज प्रोवर्ब, ये क्या कहते हैं, समथिंग आई कीप फॉरगेटिंग द वर्ड. उसको कहा जाता है कि एक प्रॉब्लम है कि आप किताबें खरीदते रहते हैं लेकिन उसको पढ़ते नहीं है. टिशुन डोकू ऐसी कुछ, आई कीप फॉरगेटिंग द वर्ड बिकॉज जापनीज वर्ड है. तो वो आपकी एक प्रॉब्लम है कि यू कीप बाइंग द बुक्स बट यू एंड अप नॉट रीडिंग देम. बट ये किताबें लेता रहता हूँ अपनी.
पढ़ने की क्या फ्रीक्वेंसी है, कितनी जल्दी एक पेज या
पढ़ने की आदत है? ऑनलाइन भी रीडिंग करना ये सब कुछ करना तो अल्हम्दुलिल्लाह वो है. बट ये कि ड्यू टू अदर एक्टिविटीज़ वो चीज़ एक मिनिमाइज हो गई है. मैंने कि आई वुड कॉल माई सेल्फ अ रीडर बिकॉज आई लाइक टू रीड, द सेम टाइम आई लाइक टू राइट. बट ये कि चीज़ों के लिए आपको एक लाइफ स्टाइल चाहिए होता है, वेर यू गेट इन टू दैट इंट्रोवर्ट मोड, वेर यू नीड टू बी एबल टू गेट बैक इन टू द हैबिट. तो थिंग्स आर प्रीटी फास्ट दीज डेज. जैसे अभी भी अब मैं अपनी रूटीन के बारे में बोलूँ तो लाइक रास्ते में मंच करता आया हूँ बिकॉज खाया नहीं ज़्यादा, वो यू नो जल्दी जल्दी करना, इधर भागना उधर भागना, अल्हम्दुलिल्लाह. बट ये कि द ओनली टाइम यू गेट इज़ लाइक रात के वक्त, नहीं उसे थकार की नहीं आना शुरू हो जाती करीब. बट ये रीडिंग हो रही बट नॉट एज मच एज आई वुड वॉन्ट टू.
मैं जो हूँ बहुत चंक पढ़ता हूँ और उसको प्रोसेस करता हूँ अच्छी तरीके से, चाहे वो एक पेज हो चाहे वो एक बात हो.
टोटली अप टू यू.
ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ता, एक बुक पढ़ते पढ़ते 6 महीने लग जाते हैं कभी कभी, मोर देन दैट.
वो ये 6 महीने भी ज़्यादा है बट आई थिंक एज लॉन्ग एज आई थिंक देयर वाज एन एक टेड पे टॉक भी थी कि जाना कि वाई अर्लियर टाइम्स पे लोग ज़्यादा प्रोसेस करते थे इन्फॉर्मेशन को और आज के टाइम पे नहीं होता. ऑल दो हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहीं ज़्यादा है. तो द गाय हु वाज गिविंग अ प्रेजेंटेशन ऑन टेड, उसने ये बात बोली कि देखिए बिकॉज हमारे इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारे जो जहन हैं वो कमज़ोर हो गए हैं. बिकॉज हम उस चीज़ को मिसाल के तौर पे हमें एक जैसे सहाबा की एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है? आप सहाबा को सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ऊपर जो है ना अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आयत उतरी, अब उस आयत को उन्होंने इंटरनलाइज किया, अमली तौर पे देखा, उसको याद किया, उसको समझा, उसके एस्पेक्ट्स को समझा. हम किताबें शायद पढ़ लेते हैं और उसको इंटरनलाइज़ नहीं करते, तो उसकी वजह से जो है ना वो बहुत इन्फॉर्मेशन तो बहुत है लेकिन उसकी वजह से जहन इसलिए कमज़ोर हो गए बिकॉज इट्स द रीज़न वाई जहन कमज़ोर होने की बात है बिकॉज इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं बट उसको इंटरनलाइज़ या उसको समझने की उसको उसकी गहराई को उसकी डेप्थ को उसकी रूह को समझने की कोशिश नहीं कर रहे
ऐसे.
तो ये था तो आज का हमारा पॉडकास्ट इसी से रिलेटेड है. आज हमने एटॉमिक हैबिट्स नाम रखा है बिकॉज बहुत से लोग सवाल ये करते हैं कि बुरी आदत किस तरह से छोड़ें. तो हैदर आप इसकी ओर रोशन डालेंगे और हमने ज़ेरेन को बुलाया है बुरी आदत के बारे में तजुर्बा शेयर करने के लिए क्योंकि हम सबकी तो अच्छी आदत हैं, अच्छे बच्चे रहे हैं हम लोग. तो बुरी आदतों के बारे में आप बताएंगे कि आप कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं बुरी आदतें छोड़ने के. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. बट ये कि आई थिंक इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है एंड इसकी مثال بیان کرتے ہوئے میں بس یہ بات بولتا ہوں کہ لاٹ آف پیپل اسٹرگل اور اس کی اتنا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی بھی اپنی بری عادت کو اور بدل کے اچھی عادات میں اس کو لے کے آ سکتا ہے.
بالکل.
اب وہ ایک پروسیس ہے پیشنس کا, کنسسٹنسی کا, اس کو کیا جا سکتا ہے. تو یہ آج کا ہمارا ان شاء اللہ تعالیٰ ہے. ہم اس کے ساتھ باقی ایلیمنٹس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے, کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے, آپ کس طرح سے اپنے بلیف کو بدل سکتے ہو, بلیف اباؤٹ یور سیلف.
بالکل.
لاٹ آف پیپل ہیو دس نوشن کہ میں نہیں کر سکتا, میرے ہمارے اندر یہ ہے ہی نہیں سکت. تو یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ہیو یور آئیڈینٹی ری چیکڈ, اور اس کو پہلے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے. تو حیدر, کیا ارادہ ہے آپ کا؟
اب جی بھائی, میرا تو یہی ارادہ ہے کہ جس طریقے سے اسی ٹاپک کے اوپر بک بھی ہے جیمز کلیئر کی, تو اسی کی اس کے اندر سے بھی کانٹینٹ کافی اچھا آپ کو پوائنٹرز مل جاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے عادات کو چینج کرنا ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ جو میرا اس بارے میں اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو سب سے بڑی فیلئر کی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنی عادات کو چینج کیوں نہیں کر پاتے, اس کی ریزنز یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ بہت ان ریئلسٹک قسم کے گولز ایک دم سے بناتے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا وہ موٹیویشنل اسپیکرس کی اسٹوری سن کے اور ان سے موٹیویٹ ہو کے یا لوگوں کی اسٹوری آف چینج کو سن سن کے ہم کہتے ہیں یار کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ دھماکہ ہو جائے, کچھ ایکسیڈنٹ ہو جائے, سب کچھ چینج ہو جائے, زندگی بدل جائے تم سے. تو دیٹس ناٹ ہاؤ لائف ورکس. آپ کو جو ہے نا وہ محنت کرنی پڑتی ہے, چھوٹے چھوٹے ٹینجیبل ٹارگیٹس بنانے پڑتے ہیں. تو جب ہم اتنے بڑے بڑے گولز آبجیکٹیوز رکھتے ہیں نا کہ یار راتوں رات سب کچھ چینج ہو جائے, اور جب وہ اچیو نہیں کر پاتے پھر ہوتی ہے مایوسی, اور پھر جو ہے نا وہ ویلی آف ڈسپیئر کے اندر جا کے پھر اس سے دوبارہ نکل نہیں پاتے. اس لیے آئندہ زندگی میں کبھی دوبارہ بودر بھی نہیں کرتے اس کے اپنے ہیبٹ کو چینج کرنے کے بارے میں. تو آئی تھنک دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ جو چیز ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ٹینجیبل گولس, چھوٹے اچیویبل گولس بنائیں. کیونکہ چھوٹی جو عادات ہیں, جو چھوٹے اعمال ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے نا کہ جو سب سے بہترین عمل ہے, جو سب سے بہترین اعمال ہیں وہ ہیں جو کہ چھوٹے ہوں بے شک لیکن کنٹینیوس ہوں, جو اندر کنٹینیوٹی ہے, اللہ سبحانہ پسند ہے, جو کنٹینیوسلی لگاتار چلے جا رہے ہوں, بے شک چھوٹے ہوں فرق نہیں پڑتا. تو اسی لیے میرے خیال سے ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹینجیبل ٹارگیٹس لے کے آگے بڑھنا چاہیے, جیسے کہ دھماکہ کرنے کی کوشش کریں ایک دم سے.
اس کا جو آپ نے کتاب بھی لی, انہوں نے ایک مثال بہت اچھی طریقے سے پکچرائز کر کے بتایا ہے کہ آپ نے 1% ہیبٹ کو دن میں بدلنا ہوتا ہے, 1% آپ نے چینج کرتے رہنا پڑتا ہے, 1% آپ کریں گے. اس کی مثال یہ بتائی کہ آپ ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس روم میں ایک بڑا سا آئس کا ایک پیس پڑا ہوا ہے, آپ کو سردی لگ رہی ہے, ابھی مے بی شاید 26 degrees ہے یا مے بی 13 degrees ہے, شروع میں کچھ نہیں ہوا لیکن آہستہ 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 وہ آئس ایک پوائنٹ پہ آیا جہاں پہ اس نے میلٹ کرنا شروع کر دیا. تو آپ کی ہیبٹس بھی ایسی ہیں, آپ کنسسٹنٹلی اگر مثال کے طور پہ کچھ لوگ بہت اسٹرگل کرتے ہیں بری عادت کو چھوڑنے کے لیے, تو 1% ہر دن اس چیز کو امپروو کریں, اور اس چیز کو امپروو کریں تو آہستہ آہستہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ اس ہیبٹ کو بریک کرنے کی طاقت آ جاتی ہے.
بالکل.
اور ہم اگر ہیبٹس کی بات کرتے ہیں, برے ہیبٹس کی بات کرتے ہیں, تو ہم گناہوں کی بات کرتے ہیں.
بالکل.
اور اس کے لیے بلیف بہت بدلنا ضروری ہے, جیسے ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی اصل حقیقت پتہ چل جائے, اپنا جو رتبہ پتہ چل جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح سے تو کس مخلوقات میں کس طرح سے تمہیں ایک افضلیت دی ہوئی ہے, تو تم گناہ کرتے ہوئے اپنی توہین سمجھو. مثال کے طور پہ انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اصل میں اس کو اس ہے بلیف کا مسئلہ ہی ہے نا, عقیدے کا مسئلہ ہے. عقیدے سے مراد یہ کہ وہ اس بات پہ بے صبرہ ہو جاتا ہے کہ مجھے جو ابھی لذت ہے, جو ریوارڈ ہے, مجھے ابھی چاہیے.
بالکل.
اس کے صبر پہ جو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا, مجھے اس کے لیے یا تو کمی ہے یقین کی یا مجھے پیشنس نہیں ہے.
بالکل.
اور میں اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے وقتی طور پہ اس گناہ میں اپنے آپ کو ملوث کر دیتا ہوں, اس کو انوالو ہو جاتا ہوں.
انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے پیچھے,
انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی جو ایشو ہے.
اور چیز بھائی, ہم چینج کو جو ہے وہ رزلٹ سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت میں چینج جو ہے وہ ایک پروسیس ہے, ایک لائف اسٹائل ہے. ہمیں انسٹنٹ رزلٹس چاہیے ہوتے ہیں کہ اگر میں آج کچھ بدلتا ہوں تو وہ فوراً سے اس کے ریزلٹس مجھے ملے, جو کہ ہوتا نہیں ہے. ایک کنسسٹنسی کا لائف اسٹائل ہوتا ہے. جیسے ایک جم کی ہم اگزامپل دیتے ہیں کہ آپ جب پہلے دن جم جاتے ہیں آپ کو ایک دم سے چینج نہیں نظر آتا, دوسرے دن نہیں آتا, تیسرے دن نہیں آتا, لیکن اگر آپ اس آپ کو یہ آپ کا بلیف ہے کہ الٹیمیٹلی جس پاتھ میں میں ہوں الٹیمیٹلی مجھے چینج ملے گا, اس چینج کو میں اچیو کروں گا, تو آپ اس پہ کنسسٹنٹ رہتے ہیں.
صحیح.
اور دیر کمز اے ٹائم, مے بی 3 مہینے, 6 مہینے, سال, वो चेंज आपको दिखता है, लेकिन हम असल में इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं कि अगर आज मैं बदलाऊँ तो मुझे कल रिजल्ट मिले. और फिर इस वजह से हम डीमोटिवेट होते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट्स इंस्टेंट नहीं मिलते, इंस्टेंटली हमें वो रिजल्ट्स नहीं दिखते, तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं और फिर कभी कोशिश भी नहीं करते उस चीज़ की तरफ जाने के लिए. फिर
इसकी एक वजह ये है कि असल में मिसाल के तौर पर आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, कभी कभार वो कन्फ्यूजन का शिकार होता है. मैं अगर ये बात बोलूँ कि मुझे किताब पढ़नी है, अभी हम शो में किताब की बात ही कर रहे थे, तो मेरा मकसद किताब ख़त्म करना नहीं है, मेरा मकसद एक रीडर बनना है या उस किताब से कुछ हासिल करना है. जब मेरा मकसद गलत होगा या कन्फ्यूजन का शिकार होगा कि मुझे किताब ख़त्म करनी है, तो शायद मैं उससे वो आउटकम हासिल ना करूँ. क्योंकि अगर आप एक मिसाल दें, एक पिक्चराइज करें कि एक टारगेट है, उसका एक सेंटर है, उसके आसपास और सर्कल्स हैं, जैसे तीर लगाते हैं निशाने पर, तो उसका जो आउटर लेयर है वो बेसिकली जो है ना आपका जो ऑब्जेक्टिव आप कहते हैं ना गोल, शायद आउटकम है जो मैं चाहता हूँ.
बिल्कुल.
लेकिन मिडिल में उसका प्रोसेस का लेयर है.
Exactly.
और उसका जो मेन टारगेट है वो आपकी अपनी शनाख्त है,
आइडेंटिटी.
अगर आप अपनी शनाख्त, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप अगर उसको करें तो आपका प्रोसेस बदलेगा और ऑटोमेटिकली आपका आउटकम बदलेगा. इसको मैं बेहतर तरीके से बताऊँ. मिसाल के तौर पर अक्सर और बेशतर लोग बोलते हैं कि यार मुझे जिम में बॉडी बनानी है, मुझे वेट कम करना है. वो कीटो कर लेंगे, वो एक टाइम पीरियड पर अपने डाइट को कंट्रोल कर लेंगे, बट वो ये नहीं समझेंगे कि आपका असल में वर्कआउट एक लाइफस्टाइल है, एक गोल खाली नहीं है. गोल आपको अचीव हो जाएगा जब आप उसको अपना लाइफस्टाइल बना लेंगे. लोग क्या करते हैं, 6 महीने के लिए एक्सट्रीम एक रिगरस रूटीन के अंदर घुस गए, अचीव हो गया, उसके बाद वापस उस हैबिट पे आ गए,
सब कुछ रिग्रेस हो
गया. द रिसर्च बेसिकली शोज कि जो लोग वेट लूज करने के लिए इतने एक्सट्रीम मेजर्स करते हैं, उनका मजीद वेट गेन हो जाता है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू चेंज देयर हैबिट. वंस यू नो कि आपकी आइडेंटिटी क्या है और आपका बेसिक क्या, अपने बारे में आप चाहते क्या हो, हाउ यू सी योरसेल्फ, योर प्रोसेस चेंज, आपका प्रोसेस चेंज होगा, आपका अक्वायर करने और ऑटोमेटिकली आउटकम होगा. जैसा आपने बात की कि मैं पहले दिन ब्रश करूं, मैं वर्कआउट करूं, तो मैं बोलूं कि यार मुझे आउटकम नहीं मिल रहा, बट आप कंसिस्टेंसी के बाद देखेंगे 6 महीने बाद आपको रिजल्ट सामने आएगा. सो इट्स ऑल अबाउट बीइंग एबल टू डू दोज 1% 1% हैबिट्स अपनी लेके आनी. बिकॉज लाइक भी बात है ना कि आपने जो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोट की कि अल्लाह सुभान ताला को एकदम से आउटकम थोड़ी चाहिए, अल्लाह ताला फिर आपको फॉर
इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस.
द आइडिया इज नॉट जस्ट द प्रोसेस इटसेल्फ. मैं ये पता क्या बोलता हूँ, उस प्रोसेस में जो आपकी अचीवमेंट का जो आपको एक लज्जत मिलती है, आपकी अपनी मेहनत शामिल है, आपको एक अर्न करने की, हासिल करने की एक एक, एक उसके अंदर अपनी एक अचीवमेंट का एक एहसास है, ये चीज़ है. और आप जिंदगी देख लीजिए, अल्लाह ताला जन्नत में डाल सकते थे.
बिल्कुल.
तो ऑल ऑफ दिस हैज टू बी
जी, इट हैज़ टू डू विद माइंडसेट. वजी भाई, अगर हमारा हम कभी कभी ये करते हैं कि हम अपना जो विजन होता है ना उसको बहुत लिमिटेड रखते हैं. लेट्स से मेरा गोल ही है कि मैंने वेट लूज करना है 6 महीने में. 6 महीने हो गए
मैंने शादी की बात नहीं की आपने.
अब मैं आगे कुछ
चले आप बोले थे
खत्म
खत्म
हमारा डिस्कशन फिर एक अच्छी तरीके से कहीं और चला जाता. जी जी
अच्छा क्या बात कह रहा था मैं,
आप भूल गए ना, बस यही चेक कर रहा था मैं.
क्या बात हो गई.
क्या बात है, बात ही भूल गई है, बात अच्छा, ही भूल गई है.
हम अपना विजन जो है ना वो क्लियर नहीं होता.
हाँ.
लिमिटेड गोल्स बनाते हैं, लिमिटेड विजन होता है, और जब हम वो अचीव कर लेते हैं ना, कर लेते हैं, तो हमें नहीं पता होता उसके बाद हमने क्या करना. तो हमेशा अपना विजन जो है ना वो अल्टीमेट विजन बनाए, के बजाय इसके कि 6 महीने में आपने वेट लूज करना है, आपने जिंदगी भर एक हेल्दियर लाइफस्टाइल की तरफ जाना है और उसके लिए स्ट्राइव करना है. तो हम ये नहीं करते, हमारा माइंडसेट होता है कि मैंने ये चीज अचीव करनी है. जब आप अचीव कर लेते हो
कंफ्यूजन पर
कंफ्यूज हो जाते हो, फिर अब आगे इससे नाउ व्हाट.
ये मिसाल इंसान की हमारी दुनिया में देख लें, एलीट क्लास की ये मिसाल है. हम कहते हैं ना कि यार सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब क्या करें, अब सब कुछ अचीव कर लिया, देखें अब क्या करें, अब चले जाने तो शादी करनी है, हम सब कुछ करके बैठ गए तब क्या करें, अब कुछ अचीव नहीं करने
वाले. ऑन अ सीरियस नोट, जाना मैं भी लोगों को बात बताऊँ, शादी की मिसाल ही ले रहे हैं, ठीक है. ऑन अ सीरियस नोट आई विल ग्रैब ऑन टू दिस पॉइंट कि शादी करनी है, अब लोगों ने शादी करनी है, दे डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द रियल चेंज.
बिल्कुल.
दे जस्ट वॉन्ट टू गेट मैरिड. वो कहते हैं ना कि दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन द इवेंट रादर देन द मैरिज इटसेल्फ.
बिल्कुल ऐसी है.
तो वो समझते हैं अब शादी कर ली, अब नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हैप्पीली एवर
ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो
जाएगा. पर वो नहीं समझते कि आपने अभी लाइसेंसिंग करवा दी, अब आपको असल जो है
मेहनत तो भी करनी है,
अभी मेहनत करनी है आपको, आपका आपको अपनी खुद की असलियत पता चलेगी, आपको अपना बर्दाश्त, अपनी अपनी लिमिट, अपना सामने वाले को डील किस तरह से करना है. और जैसे ही आपको लगता है कि आप सीख गए हो, बच्चे हो जाते चलो यार वो मिसाल है ना कि यार चलो टाइम गुजारते हैं वाइफ के साथ, कहना कि चलो यार इवेंचुअली बच्चों को सुला वुला देंगे तो कुछ खा पी लेंगे ना, तो पता चला वो बच्चों को मेहनत से सलाह वला दिया, खाने पीने का टाइम आया तो दोनों खुद सो गए. वो वाले टाइम स्पेंड करना भी स्ट्रगल हो जाता है, बिकॉज देन इट बिकम्स द सेम रूटीन. सुबह उठे, काम पे गए, आए, थक के आए, फलां भाग दौड़ हुआ. तो यू नो यू इन दिस एंटायर प्रोसेस अगर आप ये चैलेंजेस लेने के लिए तैयार नहीं हो तो योर द मैरिज और द वेरी गोल दैट यू सीकिंग, जिस चीज़ को आप हासिल करने की कोशिश, वो आपको हासिल करने के बाद आप बोलोगे यार दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड.
एग्जैक्टली.
तो आपने हमेशा ये बात देखनी है कि आपका उस चीज़ के बारे में बिलीफ और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होनी चाहिए, दैट आई एम गेटिंग मैरिड एंड व्हेन आई एम गेटिंग मैरिड इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी एन इजी राइड, यस, बट द प्रोसेस. मिसाल के तौर पे मैं सॉरी मेरी बात लंबी हो रही है, मैं एक पॉइंट बोलता हूँ. अक्सर लोग बोलते हैं कि यार मैं दीनदार इंसान से शादी करना चाहती हूँ, दीनदार इंसान से शादी करना चाहता हूँ. What they do not understand कि अल्लाह सुबहाना ताला ने कुरान में शादी को अच्छा होने के लिए एक एलिमेंट को डिस्कस किया है, लितस्कुनूफी. ठीक है, आप उसमें आपको सुकून हासिल हो. अब आप बोलोगे कि मैं एक रिलीजियस इंसान से शादी कर रही हूँ तो शायद ये कर रहा हूँ तो मेरी ज़िंदगी जो है ना बहुत अच्छी हो जाएगी.
बिल्कुल
ज़रूरी नहीं है. आप एक दीनदार इंसान से, पाँच वक्त के नमाजी से, हज करने वाले से, ज़कात देने वाले से, दाढ़ी वाले से, पर्दे वाली से शादी कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए नफरत का बायस भी बन सकते हैं.
डेफिनेटली.
अगर इंस्पाइट के आपके आपस में डिफरेंसेस हैं, पर्सनालिटी डिफरेंसेस हैं, अगर आपकी और उसकी रिलेशनशिप के बीच में सुकून नहीं है, क्योंकि द वेरी पर्पस इज़ नॉट कि आप लोग आइडियल मैच हो, बट आप लोगों की ज़िंदगी की पर्सनालिटीज़ और मेंटालिटी ऐसी हो कि आपको एक दूसरे के साथ बैठ कर सुकून हासिल हो.
बिल्कुल ऐसी है.
नोइंग अगर वो नहीं है, और आप चाहे बहुत पैसे वाले के शख्स के साथ भी हो सकते हो, सुकून नहीं होगा. बहुत ही इंडिविजुअल इबादत करने वाला या दावत के काम में इन्वॉल्व करने वाला हो, लेकिन हो सकता है उसकी नेचर के हिसाब से आपकी सुकून ना हो. तो द वेरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू बी एबल टू, जब आप देखें कि यार मेरी शादी हो तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए. बिकॉज अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, आप घर बाहर गुजारेंगे, आप नहीं होगा, आप आपस में कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, आपके बच्चे सफ़र कर रहे होंगे. तो अगर आपका ये माइंडसेट दुरुस्त हो गया शादी के मुताबिक, तो आप उस सुकून को हासिल करने की कोशिश करेंगे.
बिल्कुल ऐसे.
आप उस गोल को जो अल्लाह सुब्हान तआला से करीब होने का वो हासिल करेंगे. अगर आपका मिसकंसेप्शन है कि आप बस मेरे सिक्स पैक हो जाए, मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल ना हो, बहुत से लोग सिक्स पैक होने के बावजूद भी कमज़ोर होते हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू मच टू बी टू लूज फैट, बॉडी फैट, एंड दे बिकम द वीकेस्ट. बट कुछ लोग एक्चुअली ईट हेल्दी, दे आर एबल टू लिव लॉन्गर, हैव अ मच मोर यंगर अपीयरेंस. तो आप चीज़ के बारे में अपनी अगर बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त करें तो आपके लिए बहुत फ़र्क पड़ता है.
ऐसे ही. लेकिन मुझे भाई मेरा एक सवाल है आपसे कि आप कह रहे हैं कि दीन इज़ नॉट इट, दीन इज़ पार्ट ऑफ इट. तो कंपैटिबिलिटी के लिए मतलब लेट्स से आप किस तरह से, व्हाट इज़ द राइट वे कि आप,
मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ ना, मैं आपके सवाल को क्लैरिफाई करने के लिए आपसे पूछता हूँ कि आप नहीं डर नहीं लगे, आप डरा नहीं करें, आप अपना बिलीफ सही करें अपने बारे में. नहीं, मैं आपसे बोलता हूँ कि आप जब बोल रहे हैं कि दीन, तो दीन से मुराद क्या होती है आपकी?
दीन से मुराद ऑब्वियसली एक माइंडसेट है, जो अल्टीमेट पर्पस है लाइफ का वो क्लियर हो, विजन जो हो ज़िंदगी में वो क्लियर हो. नॉट दैट के इबादत करनी है, नमाजें पढ़नी है, पता हो क्यों पढ़नी है, किसके लिए पढ़नी है.
हैदर, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप बोलते हैं कि एक दीनदार इंसान से शादी करनी है, तो उस दीनदारी से आप क्या मुराद लेते हैं?
रिलीजियस कमिटमेंट.
रिलीजियस कमिटमेंट. अगर किसी की रिलीजियस कमिटमेंट हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो शख्स प्रॉब्लमैटिक भी हो?
हो सकता है, अगर उसने पूरी तरीके से इंटरनलाइज ना किया हो, उसने सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स को तो अपना लिया,
तो क्या वो दीनदारी हुई?
اب یہ وہ والے معاملات ہیں کیونکہ ہم تو اپیرنٹ کو جج کر رہے ہیں خالی.
نہیں میں بات جو اس کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم اکثر اور بیشتر یہ دینداری سے مراد یہ لیتے ہیں کہ دین پرائیورٹائز کرنی ہے, لیکن دینداری ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تم میں سے سب سے بہترین دین اس کا ہے جس کا اخلاق بہتر ہے.
بالکل,
آپ کا اخلاق, آپ کا کیریکٹر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خالی مخلوق کے ساتھ نہ ہو, آپ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بھی آپ کا ایک ریلیشن شپ بہتر ہو. یو آر سنسیئر وتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کہ ریلیجن از بیسڈ آن سنسیئرٹی. تو صحابہ نے پوچھا کس سے؟ بولا کہ اللہ کے ساتھ, کہ آئی ہیو ٹو بی سنسیئر, کہ نہیں یا اللہ میری زندگی تیری ہے, تیری دیوی ہے, میری پرائیورٹی, یو کم ٹو می فرسٹ. ٹھیک ہے, آپ میرے پاس, میرے لیے سب سے پہلے ہو, ایوری تھنگ کم سیکنڈ اللہ کے رسول کے ساتھ. آپ کا جب اخلاق بہتر ہوگا, آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلقات, آپ کے چاہے لوگ آپ کے ساتھ برے رویے رکھیں, آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو, آپ کا اخلاق بہتر ہوگا تو آپ کی شادی میں سکون آئے گا. تو دینداری سے مراد ہم یہ کہتے ہیں, ہم دینداری سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ بندے کی داڑھی ہے, دیکھو دینداری ہوگی لیکن دو بزنس میں دو نمبر ہی کرے گا, ضرور نہیں ہے داڑھی لائسنس نہیں ہے. اس اصل جو دین ہے نا وہ آپ کے دل کا معاملہ ہی ہے.
صحیح بات,
وہی آپ کی آؤٹر اپیئرنس کو تبدیلی میں لے کے آئے گا. اور لیکن اگر آؤٹر اپیئرنس کو ہم نے صرف دینداری کا چیک اینڈ بیلنس دے دیا نا, تو وہ آؤٹر اپیئرنس کوئی بھی اپنا سکتا ہے.
اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو دیٹ.
یہ اپنانے کے بعد اس کی واپس جو جاہلیہ ہے نا, اس کی جو جہالت ہے واپس اس کے اوپر ظاہر ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے کسی سوشل پریشر کی وجہ سے داڑھی شیو نہ کر رہا ہوا, پردہ والی عورت ہے.
اور اسی لیے میرے خیال سے کہ بہت ضروری, جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ ایٹ دا کور آف اٹ بلیف سسٹم آپ کا درست ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں, شاید آؤٹ کمز ان کو مل بھی رہی ہوں اپیرنٹلی, بہت سارے لوگ ہیں جن جو پروسیس بھی صحیح کر رہے ہوں, درست کر رہے ہوں, لیکن اگر ان کا بلیف سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو ان کی جو موٹیویشن ہے اٹ ول بی شارٹ لفڈ. ایک وقت ایسے آئے گا کہ وہ دین سے خود متنفر ہو جائیں گے یا خود بیک فائر کر جائے گا سب کچھ, ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو گو ہے فائر. ریزن کیا تھی؟ کہ ان کا جو بنیادی بلیف سسٹم تھا وہ درست نہیں تھا. اسی لیے ہمارے دین کے اندر عقیدے کی جو ہے وہ اتنی اہمیت ہے. یعنی کہ آپ سب سے پہلے توحید کو جو ہے نا وہ بالکل عقد, یعنی کہ آپ نے گرا باندھ لیا دل کے اندر, یعنی دس از سم تھنگ دیٹ از ان ڈاؤٹ, ڈاؤٹ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں اس کے اندر, کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ میرے ذہن میں نہیں ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہ چیز مکمل ہو جائے, توحید کلیریفائی ہو جائے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو کرنی ہے, اگر یہ چیز مجھے یقین ہو کہ میں نے کرنی ہے اور یہی میری سیلویشن کا ذریعہ ہے, تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی بندے کا پروسیس خراب ہو جائے, کسی بندے کی آؤٹ کم غلط ہو جائے, اور اس کو زندگی میں کبھی بھی جو ہے نا اپنی بیڈ ہیبٹس کرنے میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے. آئی تھنک وی ہیو ٹو گو بیک ایٹ دا کور آف اٹ, دیٹ از دا بلیف سسٹم.
بٹ اگین میں عقیدے کی بات کروں نا, تو لوگ عقیدے کی بات کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ایک ایگزسٹنس سے مراد, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو توحید کے متعلق وہ بولتے ہیں, شرک کا ایلیمنٹ ان کی ربوبیہ الوہیہ اس کے بارے میں بولتے ہیں. بٹ آپ یہ بات دیکھیے, آپ کا بلیف عقیدہ, میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں عقیدہ از دا فرسٹ پارٹ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کانسٹنٹلی کانشیس رہنا.
بالکل,
مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ہے تہجد پڑھتی ہے, روزی بھی رکھتی ہے, عبادات میں بہت زیادہ ہے, نوافل بھی پڑھتی ہے, لیکن وہ بد اخلاق ہے. وہ بد اخلاق ہے, کیا اس کی عبادت, اس کی عادت ہے؟ تو یہ بات کے اوپر غور کیجیے گا, شاید ہو سکتا ہے عادتاً کر رہی ہو اس کے لیے وہ سرکمسٹانس. لیکن ایک عورت ہے جو خالی فرائض کرتی ہے,
بالکل,
لیکن اس کا معاملات لوگوں کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ اس کے اوپر پرائیورٹائز کرے گی, یہ جنت میں جانے والی ہے. تو کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں عقیدے کی بات کرنے والے بد اخلاق بدتمیز بھی ہو جاتے ہیں.
بالکل,
کہ دے بیکم ٹو ججمنٹل, بیکاز دا آئیڈیا از ناٹ جسٹ ٹیلنگ پیپل کہ ہو اللہ از, یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو الاؤ پیپل ٹو کنیکٹ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ از ویل. مثال کے طور پہ میں یہ بات بولوں کہ یہ میری دینداری ہے کہ میں سب بولتا ہوں کہ لوگوں کو بولتا ہوں کہ یار حرام گندے میں ہو گئے ہو, غلط ہو گئے ہو, تم تو جہنم میں جاؤ گے, مطلب اس سے بہت ایکسٹریم لیول پہ بھی ہوتے ہیں. بٹ ایک دینداری یہ بھی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے بچایا, تو نے مجھے اس دین کی فکر دی, یا اللہ میرا یہ بھائی ہے, میرے یہ بہنیں ہیں, یا اللہ ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں,
خیر خواہی
ان کے لیے چاہنا. یہ بھی تو تعلق آپ کا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آپ نے ایک پرواہ کرنی ہو.
بالکل.
اور یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے کچھ لوگوں کے لیے بد دعا کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا. ایک مخصوص ٹائم پہ, علماء کا ایک ڈبیٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مخصوص ٹائم پہ بد دعا دی, تو کیا کفار کے لیے جنرلی करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक एक इसके ऊपर भी एक वो डिबेट है। बट इन एनी केस ये ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उहद के मामले पर जब आए तो उन्होंने क्या बोला कि अल्लाह उन्होंने बद्दुआ दी कि जो जो अपने नबी की कदर ना करे, जो अपने भेजे हुए जो उनकी तरफ जो नबी है उसके उसके साथ ये मामला करे तो ऐसी कौम का क्या बेहतर होगा। अल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला रोक दिया। और आप देखिए उसमें कितने लोग थे जो बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। सो वी नेवर नो हु माइट चेंज बिकॉज ऑफ अ स्मॉल एफर्ट्स। इसकी एक और एग्जांपल दे दूँ, आई एम सॉरी मेरी बात लंबी हो रही है, लंबा कर देता हूँ। अल्लाह सुब्हान तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू में ही बता दिया कि आपके मिशन के आउटकम में सिर्फ थोड़े से लोग इस्लाम कबूल करके आएंगे।
बिल्कुल।
अब वो कौन है? अब आपकी 23 साल मेहनत है, अब वो 23वें साल में कोई इस्लाम कबूल करके आएगा, पहले साल में लेके आएगा, बीच में लेके आएगा, दैट इज़ नॉट योर कंसर्न।
बिल्कुल।
आपने पहले से ये बिलीव अपना कर लेना है कि अक्सरियत आपके ऊपर ईमान नहीं लेके आएगी, थोड़े ही आपके ऊपर ईमान लेके आएगी। अब वो थोड़े कब है? वो आपने कंसिस्टेंटली दावत देनी है। वो खालिद बिन वलीद भी हो सकते हैं, वो फतह मक्का के टाइम पे इसके करीब ही वो इस्लाम कबूल करें, या वो अबू सुफियान हो सकते हैं, ठीक है, या वो कोई और हो सकता है जो बाद में आए। आपने अपना काम करना
है। अल्लाह सुब्हान तआला ने पर्पस क्लियर कर दिया कि नंबर आपका जो है गोल नहीं है, नंबर्स आपने अचीव नहीं करने, आपने दावत देनी है। पर्पस शुरू में क्लियर हो गया और फिर मोटिवेटेड थे एंड तक, नंबर्स बढ़े ना बढ़े वो मोटिवेशन वहीं पर थी। तो बिलीफ सिस्टम जो है अल्लाह सुब्हान तआला ने पहले से बता दिया फ्रेमवर्क उसका।
बिल्कुल।
मैं अभी तक
अगर बात करूं, अगर मैं बात करूं आपको टू बी एबल टू ऐड योर ऑब्जेक्टिव, योर बिलीफ अबाउट योर सेल्फ, ऑडियंस सुन रही होगी, बोलो मैं अपने बारे में अगर रियलिस्टिकली सोचूं, क्या मेरी इबादत इस लायक है कि मुझे जन्नत मिले? जजमेंटल हो रहा है मेरे बारे में,
मैं अपने बारे में सोच रहा था, मेरी
अगर आप देखिए कि मैं ऑनेस्टली अपने बारे में बोलूं कि मेरी नमाज
ऑन गार्ड पकड़ते
मेरी नमाज उस लायक नहीं है, मेरा शुक्र उस लायक नहीं है, मेरी सिंसेरिटी अल्लाह सुब्हान तआला के उस लायक नहीं है, लेकिन मेरे जो नबी हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा प्रोसेस, मेरी आइडेंटिटी ये बात क्लियर कर दी कि तुम इस लायक हो ही नहीं, ना तुम पैदा होगे तो तुम अगर सजदे में गिरे रहोगे मरते वक्त तो तुम इस लायक नहीं हो सकते, बिकॉज अल्लाह ताला ने मुझे सांस और जो ज़िंदगी दी है इसकी अगर कीमत ही तुम्हारी ज़िंदगी के हिसाब से वैल्यूट कर लिया तो तुम्हें ज़िंदगी में मिल गया।
ऐसी है,
तुम्हें अपने रब के हिसाब से देखना है कि तुम्हारा रब कितना रहीम है। और जब तुम जन्नत मांगो तो खाली जन्नत नहीं मांगो, जन्नतुल फिरदौस अला मांगो, हाईएस्ट लेवल मांगो, क्योंकि तुम अपने आप को देखते हुए नहीं मांग रहे, तुम अपने रब को देखते हुए मांग रहे हो, और वो देने पर आए तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है? आप शायद ज़िंदगी में एक सांस लेकर मर जाओ, या आप सारी ज़िंदगी आपने गुनाह किए हों और एक मरने से एक घंटा पहले कुछ लम्हे पहले आप तोबा करके मर जाओ, अल्लाह सुब्हान तआला बोलेंगे आई कैन पुट यू इनटू पैराडाइस। बिकॉज ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला के पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, आप जन्नत बना दी और नहीं बना सकते।
बिल्कुल।
आपके और मेरे रब के पास तो कोई
अल्लाह की रहमत के अलावा हम दाखिल नहीं हो सकते जन्नत के अंदर।
तो ये आपका बिलीफ आपके बारे में दुरुस्त हो। इसी तरह से अगर आप अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहते हो, और ये हर किसी के साथ स्ट्रगल है, और जस्ट टू बी एबल टू नॉट, कि मैं ये बोलूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर किसी के साथ एक गुनाह अटैच रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, बट ये कि एक एलिमेंट है, वो गुनाह वो गलती शुड नॉट बिकम अ रीज़न कि आप अपने बारे में तजलील या अपने आप को जलील करो या छोटा समझो, बल्कि उस गलती को अपने रब की जो सिफ्त है तवाब माफ़ करने वाला और बार बार माफ़ करने वाला, उसको यूटिलाइज करने के लिए बनाए। गलती हो रियलाइज़ करें कमज़ोर है यार, रब तो माफ़ करने वाला है, माफ़ करेगा, मैं फिर कोशिश करूँगा, सच्ची तौबा करना। तो ये भी आपको एक बिलीफ आपको कर दिया कि देखिए अगर आप ज़मीन और आसमान भी भर दो गुनाह करने करके तो आपका रब माफ़ करने वाला है। तो वंस यू हैव योर आइडेंटिटी क्लियर, आपको अपना अपना अपने रब अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि यार देखो मैं तो उस लायक कर ही नहीं सकता इबादत जो अल्लाह के नबी या सहाबा की। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि अगर सहाबा को पता चल जाए, अगर तुम जाके बता दो या उनको पता चल जाए कि कल उनकी मौत आने वाली है या उनका आज आखिरी दिन है, तुम उनकी नमाज में फ़र्क नहीं देखोगे, उनकी नमाज में तब्दीली नहीं आएगी।
ये फ़र्क है हम में और
ये फ़र्क है हम अपने हम में।
बिल्कुल।
बिकॉज प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आदत बदल दी। उस आदत को बदलने के लिए अब जो अगला मामला है कि आपने अपने माहौल को भी दुरुस्त करना है। अपने माहौल को भी दुरुस्त करना है।
ब्यूटीफुली सेड।
तो माहौल दुरुस्त नहीं करेंगे तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी। मैं आपने यहाँ पे बॉक्सिंग बैग लगाया हुआ है, आपने ऊपर डंबल्स भी रखे हुए हैं, लेकिन माहौल नहीं है। आप यहाँ पे ट्रेडमिल भी रख रहे हैं, ट्रेडमिल भी हमने रखी थी यहाँ पे, तो यहाँ माहौल नहीं है। यू नीड टू बी एबल टू हैव एन एनवायरमेंट।
बेइज्जती कर रहे
हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि आप काम में इन्वॉल्व रहते हो, आपका वो एनवायरमेंट नहीं है। यू हैव टू बी एबल टू एट टाइम्स पुट योरसेल्फ इन दैट एनवायरमेंट। अगर आप लॉस वेगस जाएंगे तो वो आपका माहौल आपके ईमान के पर असर करेगा।
Absolutely.
Definitely
करेगा। और हो सकता है वो आपको मोटिवेट करे उस एनर्जी की तरफ जो नेगेटिव एनर्जी।
आपकी कंपनी, आपका माहौल, एवरीथिंग मैटर।
आप हरम में मदीना जाएंगे तो आपको उस माहौल का असर आएगा।
बिल्कुल।
आप नवाफिल पढ़ने पे मोटिवेट होंगे। आप अब मोटिवेट होंगे उस एनवायरमेंट के अंदर कि मैं तवाफ मजीद करूँ, मैं और इबादत अल्लाह को राजी करूँ।
बिल्कुल।
आप जमजम पानी पीने के ऊपर करेंगे, आप ये चीज़ों के ऊपर मोटिवेट होंगे। And once you get out of that environment, it will take you back to, you know, the same old thing. इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठ के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन कहते थे कि आप में तो ऐसा लगता है जन्नत जहन्नम दिख रही है।
बिल्कुल।
लेकिन जब आपकी महफिल से बाहर निकलते हैं तो हमारा ईमान का मामला अलग होता है। तो इफ दैट वॉज द केस कंसिस्टेंटली तो आसमान से फरिश्ते उतरे तो उनके साथ मुसाफा करें। बट ये कि वो आपने माहौल को दुरुस्त करना है। एंड दिस कॉन्स्टेंट स्ट्रगल अगर आपको पता लगे कि आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर आपको पता रहेगा कि दिस स्ट्रगल आई हैव टू बी विद एंड उसके लिए लड़ना है मुझे आखिरी सांस तक।
ज़रे ने शुरू में जो बात की थी ना कि इट्स नॉट समथिंग दैट यू हैव टू अचीव और अ प्लेस दैट यू हैव टू रीच। अगर आपने ये सोच लिया तो अल्टीमेटली दोबारा से आप उसी लाइन में लग जाएंगे। अगर आपने वही प्रोसेस सोचा हुआ था और आप सोच रहे हैं कि मैं अगर इसमें चलता रहूँ, वो जो हदीस हमें मिलती है उस शख्स की जो 100 कत्ल करके, जिसे 99 करके, पर 100 कत्ल करके उसके बाद निकल पड़ा था, वो भी अगर देखा जाए तो वो अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचा तो नहीं था। वो भी पहुंचा नहीं था, उसके रास्ते में ही मौत आ गई। और अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या उसके लिए जन्नत नहीं लिख दी? रीज़न क्या थी? वो रास्ते में निकल चुका था। ही स्टार्टेड दैट प्रोसेस,
जर्नी, दैट प्रोसेस।
वो जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, यानी इट्स ऑल अबाउट द जर्नी। और सबसे एक ज़रूरी एलिमेंट ये भी बीच में सब सुनने वालों के लिए कि दूसरों को देख के ये मत सोचें कि आई एम अ फेलियर, क्योंकि हर बंदे की सर्कमस्टांसेस जो है वो डिफरेंट है। अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने किसी को बिल्कुल दीनदार माहौल दिया है, किसी को एनवायरनमेंट, जो आपने वजह भी बात की अभी, किसी को एनवायरनमेंट ऐसी दी है कि उसके लिए दीन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा आसान है, उसका सवाल डिफरेंट होगा। और वो शख्स जिसको अल्लाह सुब्हान तआला ने एनवायरनमेंट ऐसी नहीं प्रोवाइड की, उसका टेस्ट ज़्यादा सख्त है। वो अगर बेसिक्स भी फुलफ़िल कर ले, वो नई नवाफिल की तरफ जा रहा है, वो बेसिक्स फुलफिल करके गुनाहों से बचने की कोशिश भी कर रहा है, तो हो सकता है अल्लाह सुब्हान तआला के नज़दीक उस बंदे का मर्तबा जो है वो बहुत आला हो।
True.
और बहुत अफजल हो।
एक और चीज़, हम जब बात करते हैं इस पॉइंट से थोड़ा ऑफ टॉपिक है, हमें मोस्ट ऑफ दीज बुक्स जो हम पढ़ते हैं इसमें सक्सेस की एक डेफिनेशन बताई होती है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम, और गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ, ऑल ऑफ द टाइम मटीरियलिस्टिक। वी आर कंडीशनड इनटू बिलीविंग दैट मनी इज इक्वल्स टू सक्सेस, मटीरियल इज इक्वल्स टू सक्सेस। इस्लाम ने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, क्या कह रहे हैं?
सक्सेस का टॉपिक लेके आ रहा है सबलिमली।
हम वापस लाएंगे,
वापस लाएंगे, फिगर नहीं करेंगे।
मैं एक छोटी सी बस बात करूंगा। इस्लाम ने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस नहीं दिया। इवन इस्लाम ने आपको ये बताया कि अगर आप सदका देते हो ना, इट इज़ योर इंटेंशन। अगर आपके पास लेट्स से 10 रुपये हैं और आपने वो पूरे 10 रुपये अल्लाह सुब्हान तआला की राह में दे दिए, ये उस शख्स से बेहतर है जो करोड़पति और वो एक कुछ लाख रुपए।
आप जो बोल रहे हैं कि सक्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, तो इससे क्या मुराद है?
नहीं, सक्सेस जो आज के सक्सेस का कॉन्सेप्ट जो हमें वेस्ट में दिया है,
कद अफलहल मुमिनून, के मुमिन कामयाब हो गए, सक्सेसफुल हो गए।
नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट असल में मैं वही कह रहा हूँ कि वी आर कंडीशनड इनटू बिलीविंग के जो सक्सेस है वो मटीरियल है। जो ट्रू सक्सेस है वो हमें नहीं पता। एज अ मुस्लिम्स हमें पता होना चाहिए कि व्हाट ट्रू सक्सेस इज। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में क्या फरमाते हैं अबाउट सक्सेस? हु आर The people of success, वो कौन से लोग हैं जो who are succeeded? तो ये थोड़ी सी एक बात मैं कह रहा था कि वो जो हम confuse करते हैं ना कि अगर मैं successful हूँगा या मेरे पास कुछ चीज़ ज़्यादा होगी तो जो है ना मैं अच्छे काम कर सकूँगा। इट्स अबाउट इंटेंशन, इट्स अबाउट माइंड सेट, इट्स अबाउट योर निया, योर इखलास, जो अल्लाह सुब्हान तआला काउंट करते हैं।
और टाइम होता भी है कि आप दुनिया में वो हासिल नहीं कर पाते हो जो आप चाह रहे होते हो।
True.
और आपको लगता है शायद आप एक फेलियर हो, बिकॉज जो गोल आपने अपने लिए सेट किया था आप नहीं हासिल कर पाए। पर अल्लाह सुबहाना ताला उस गोल को अचीव करने का मकसद शायद आपकी ज़िंदगी में नहीं रखा अल्लाह सुबहाना ताला ने। उस प्रोसेस में चलने का जो एक एक उस प्रोसेस में होना, उस सफ़र पे आपका आगे बढ़ना, ये आपके लिए एक इन इट सेल्फ होती है। मैं मिसाल के तौर पे बात बोल रहा हूँ कि अगर आप सूरह बुरूज में देखें तो जो लोग डिच वाले जो लोग थे जिनको डाला गया था, असल में दुनिया के हिसाब से तो इनको घड़े में डाल दिया था आग में, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने कहा कि ज़ालिकल फौज़ुल कबीर, कि ये असल कामयाबी है। दुनिया की नज़र में तो वो ख़त्म हो गए, उनको वो मार दिया, लेकिन असल में चूंकि उन्होंने कदम उठा लिया सही चीज़ के ऊपर, तो दुनिया के हिसाब से तो शायद बेसिकली वो रिज़ल्ट कुछ और बना कि वो आग में डाल दिया और ज़ालिम ग़ालिब आ गया, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने कहा कि कामयाब है। तो आप कभी कभार अपनी ज़िंदगी के जवानी ज़ाया कर देते हो, अपनी ज़िंदगी की जवानी अल्लाह की नाफरमानी में गुजार देते हो, लेकिन फिर आपको रियलाइजेशन होती है और आपके लिए अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से तौफीक के दरवाज़े खुलते हैं और आप जो है अल्लाह तआला से बोलते हैं कि अल्लाह मैंने माफ़ी मांगी और मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आपकी पूरी 80% ऑफ़ योर ज़िंदगी वट एवर अल्लाह तआला ने जो आपको दी थी वो हल्की पड़ जाती है उस 10% या 20% जो भी ज़िंदगी आपकी बाकी रह गई है उसकी बिना पर, क्योंकि आपने वो 20% जो किया है ना, इसीलिए जैसे था ना कि स्क्रोल्स खोले जाएंगे क़यामत के दिन, तो वो थे इतने गुना होते हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा भारी कोई और चीज़ है जो तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह इखलास के साथ पढ़ा था, वो इस पर पूरा भारी है कि जहाँ नज़र जाएगी वो स्क्रोल्स उसके खुल रहे होंगे और वो ला इलाहा इल्लल्लाह,
क्योंकि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन, इट्स नॉट अबाउट ओनली द क्वांटिटी,
अहसन अमला, इट्स अबाउट अहसन,
एग्जैक्टली, या भी क्वालिटी क्या थी आपकी, इसमें पीछे माइंड सेट क्या था आपका, अल्लाह से ताल्लुक क्या था, इखलास क्या था, आपकी इंटेंशंस क्या थी, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। और यही चीज़ अगर हम समझ जाएँ तो हमारी हैबिट्स चेंज करना और हमारी ज़िंदगी को दोबारा से ट्रैक पर लेके आ जाना, मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और इसमें वजी भी आपने जो इन्वायरमेंट की बात की थी ना, इन्वायरमेंट की बात जो है ना, मैं उसको दोबारा से रिट्रेड करना चाहूँगा कि लोग ना कई दफ़ा इस मामले को बहुत ज़्यादा ईजी ले जाते हैं, ख़ास तौर पर हमारे दौर के अंदर ना, मैंने देखा कि इस चीज़ को ना कहते हैं यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्री मिक्सिंग हो रही है कोई बात नहीं, म्यूज़िक चल रहा है कहीं पे और मैं हर बार इंटेंशनली वहाँ पे जाता हूँ कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुद तो नहीं सुनता ना, मेरे गान में पड़ रहा तो कोई मसले की बात नहीं है, यू नेम इट एंड वी आर देयर, और फिर हम सोचते हैं कि शायद हमारे पे उन चीज़ों का इफेक्ट नहीं होगा। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो अहादीस वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं कि कंपनी का असर कितना ज़्यादा होता है, कि मतलब आपका जो दोस्त है उसका इफेक्ट आपके ऊपर डेफिनेटली होगा, या वो खुशबू फरोख्त है या तो वो ब्लैक स्मिथ है तो असर उसका होगा, या आपके कपड़े जलेंगे, या आप जो है ना आप कोई स्टेन लेके आओगे, और अगर अच्छा दोस्त है तो उसका भी आप इफेक्ट लेके आओगे, खुशबू लेके आओगे या तो आप या आपके कपड़ों से खुशबू, यानी कुछ ना कुछ इफेक्ट लाजिमन होगा। हम उसी चीज़ को अंडरमाइन करते चले जाते हैं और हम अपने आप को समझते ही हैं कि हम शायद इम्यून हैं उन सारी चीज़ों से, माज़ल्ला जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने बयान किए। हालांकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमें ये बात समझा के जगह जगह पे, बेशतर जगहों पे अल्लाह ताला कहता है कि आपने खुतवात शैतान को भी फॉलो ही नहीं करना, सिरे से ही आपने उसके फुट स्टेप्स को भी नहीं, ये नहीं कि शैतान कह रहा है कि जरे नहीं कर लो, नहीं आपने शैतान के फुट स्टेप्स को भी फॉलो नहीं करना, शैतान जहाँ से गुजरा है अवॉइड दैट पाथ। क्यों? क्योंकि अगेन हम बार बार वो बात करते होते हैं कि वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, वो ही फर्स्ट लोर यू इन टू दैट इन्वायरमेंट और वो सब कुछ नॉर्मलाइज कराएगा, एंड बिफोर यू नो इट आपके सारे के सारे क्यूज़ जो हैं और सब चीज़ें आपके लिए नॉर्मलाइज हो जाएंगी और आप उस गुनाह के अंदर कब इतने डीप जा चुके होंगे कि अब आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाता।
और ये जो आपने हदीस बताई कंपेनियनशिप वाली, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग इंसान जो है वो हार्ड वायर्ड है इन टू मिमिकिंग बिहेवियर्स। अगर जैसे वजी भाई ने शुरू में एग्जाम्पल दी थी, अगर आप लास वेगस जाते हो तो अगर आपकी इंटेंशन ना भी हो ना और आप ज़्यादा अरसे के लिए उस जगह में हो और आप लोगों को एक सर्टन वे बिहेव करते हुए देख रहे हो तो अल्टीमेटली आप उस चीज़ को मिमिक करोगे सबकॉन्शियस लेवल पे।
ठीक
है, इवन दो आपकी इंटेंशंस इनिशियली नहीं होंगी उस चीज़ को मिमिक करने की, लेकिन शुरू में आप डिसेंसिटाइज होगे और देर विल कम अ टाइम, क्योंकि आपने अपनी कंपनी वो रखी है कि आप अल्टीमेटली उस सिन में इन्वॉल्व होगे जो बाकी लोग कर रहे हैं। लाइकवाइज अगर आप जैसे हमने हरम की एग्जाम्पल दी तो आप मिमिक करोगे उनके बिहेवियर को, आप देखोगे अगर लोग हैं वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आप के बिहेवियर आपके अंदर वो चीज़ जो है ना नेचुरली अल्लाह सुब्हान तआला ने रखी हुई है सबकॉन्शियस लेवल पे।
चले हमने कुछ डिस्कशन तो कर ली, लेकिन एक रैपिड फायर राउंड भी कर लेते हैं और उस रैपिड फायर राउंड के क्वेश्चन से आप लोगों के जवाब से थोड़ा ज़रा हैबिट्स और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको भी वाजे कर लिया जाएगा। तो लेकिन आपने ये ना जल्दी जवाब देना है मुझे, बिकॉज इट्स कॉल्ड रैपिड फॉर रीजन।
सर आपने ठीक है आउट ऑफ नोवेयर ये राउंड आप ले आए हैं,
बस आपको पता है बस स्पॉन्टेनियस spontaneous
it's not scripted
nothing is scripted चलिए मैं आपसे सवाल ही पूछता हूँ, ठीक है
किसे पूछ रहे हैं, ये
दोनों से पूछ रहा हूँ तो आप
simultaneously
जवाब देना लेकिन जल्दी जवाब देना, ठीक है
कोशिश
इतनी जल्दी नहीं कि सवाल पूरा पता पूरा किया नहीं और आपने बिप बजर दबा दिया। चले दिन के कौन से समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं आप?
सुबह
रात
रात
लेट नाइट
लेट नाइट लेट नाइट ठीक है सुबह कमेंट कर सकता हूँ इस जवाब के ऊपर?
जरूर जरूर
हाँ
नहीं करेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा?
अच्छा नहीं असल में देखिए ज़ईफ हदीस है उसके ऊपर कुछ लोगों ने कह रही है लेकिन कोट की जाती है मायने के तौर पर कि अल्लाह सुबहान तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बरकत सुबह के वक्त में रखी हुई है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभार हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस या हमारी हैबिट्स कुछ ऐसी होती हैं, रूटीन्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमें कभी कभार रात को जब वो मिनिमाइज हो जाती हैं तो हम समझते शायद हमारे लिए रात नहीं, अल्लाह सुबहान तआला ने असल में रात को आराम के साथ जोड़ा है, ठीक है वह जो लिबासा अल्लाह सुबहान तआला ने उसको एक आराम का ज़रिया बनाया। तो टेक्निकली जब सूरज नीचे चला जाता है तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, क्योंकि काम खाली गेटिंग डन इज नॉट द हैबिट। आई नो मैं अगर मैं से बहुत सारी चीज़ें मैं रात को बैठ के कर पाता हूँ, मुझे टाइम मिलता है, अनफॉर्चुनेटली सुबह के वक्त वो रूटीन नहीं होती। बट मैं ये नहीं कह रहा कि जाना कि बट एज अ हैबिट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको फजर के बाद अपनी रूटीन में शामिल करें, क्योंकि एक काम हो जाना और उस काम के अंदर बरकत होना दो अलग चीज़ें हैं।
वैसे इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस भी अगर बात की जाए ना, हर बंदे की अपनी ज़िंदगी अपनी रूटीन है अपनी कंपनी है, लेकिन मैंने नोटिस किया कि जिस टाइम पे मेरे लिए सबसे ज़्यादा पर्सनली कम डिस्ट्रैक्शन होती है ना, दैट इज़ बिटवीन 6 या आप कह लें 5, नमाज काफ़ी आगे अभी 6 to 10 ये वाला जो टाइम है इस पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है।
वो इसी वजह से होती है क्योंकि आप इस तरह के लोग मौजूद होते हैं ना जो रात को काम कर रहे होते हैं, अगर वो भी दिन के वक्त काम करें तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे।
भाई असल में मैंने रूटीन अपनी चेंज करने की कोशिश की थी बीच में, लेकिन सिंक नहीं कर पाते आप बाकी लोगों के साथ।
ये भी
आप इवन दो आप प्रोडक्टिव होते हो उस टाइम ज़्यादा, मैंने ट्राई किया था एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, उस वक्त आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बहुत प्रोडक्टिव फील कर रहे होते हो, लेकिन फिर आपके काम जो है ना वो रुक जाते हैं क्योंकि बाकी लोग सोए हुए होते हैं उस वक्त। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग रिप्लाई
रिस्पॉन्स 12 बजे के बाद आने
12 बजे के बाद।
चलिए अगर आप आवाम को बताना चाहें कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है और क्यों, एक्सेप्ट फॉर अम्बिया एंड सहाबा, कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है और क्यों, तो क्या आप बताना चाहेंगे? आप
एक्चुअली नो वन, मतलब देर इज मुझे
इंस्पिरेशन
नार्सिसिस्ट
नहीं
मुझे एक दफा इंटरव्यू में यही सवाल हुआ था और इधर जो रैपिड फायर है
जॉब
और मैंने सोच समझ के जवाब दिया था और आई स्ट्रगल टू फाइंड, जब आप कहते हैं ना कि मतलब सहाबा को साइड पर कर दें और रसूल सल्लम की मिसाल को साइड पर रखें और आप फिर आप बताएं आपकी एग्जाम्पल कौन है आपके लिए लाइफ में। Actually, I do not see an example जिसको मुझे ऐसे लगे यार कि this is the person that I should be following.
वालिद साहब नोट करें।
अच्छा वैसे बहुत चीज़ी हो जाएगा अगर मैं आपका नाम लूँगा तो आपके नाम
मैंने इस बात के पैसे नहीं दिए हैं इसको प्लीज मैंने इस बात के पैसे
you definitely are one of them, लेकिन I would say my father, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है ना उनकी उनसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उनकी बिहेवियर से और उनकी जो एक आदत है उनसे काफी ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीजें सीखी, हाउ टू बी अ गुड फादर, हाउ टू बी अ गुड फ्रेंड।
इट्स अ ब्लेसिंग अगर आपको फादर के रूप में अगर इस तरह का अगर आपको मिल जाए,
एब्सोल्युटली,
एंड दिस इज अ ब्लेसिंग बिकॉज वेरी फ्यू पीपल गेट फादर्स एज रोल मॉडल्स एंड आई थिंक लोग इमोशनली शायद बोलेंगे दे वुड लाइक टू बी देयर फादर बट मेनी पीपल आई नो वुड नॉट वॉन्ट टू बी लाइक देयर फादर।
यू हैव टू बी ट्रू टू
योरसेल्फ, यू हैव टू बी, एंड बिकॉज इससे पता चलता है कि आपके बच्चे आपको कितने गौर से देख रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स
वजह भाई आपने नहीं बताया
क्या चीज़
आप बताएं?
हाँ
इंस्पिरेशन
मैं क्या बताऊँ, मैं
बताएं
हाँ देखिए मैं डिफरेंट फील्ड्स में मेरे लिए डिफरेंट रहे हैं, मैं जवाब इसलिए नहीं दे रहा था फिर लोग ज़रा हो जाएंगे। अगर मैं नॉलेज के हिसाब से देखूँ तो एक पर्सनैलिटी के हिसाब से देखूँ तो इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह, अगर मैं हदीस के मामले में अपने टाइम से करीब देखूँ तो शेख अल्बानी रहमतुल्लाह, इस मामले में, अगर मैं मैं अगर बैटल ग्राउंड में देखूं चीज़ों के बारे में, तो सलाउद्दीन अय्यूबी, तो देयर सो मेनी नेम्स आई कैन,
आपने जवाब सोच के रखे होगा ना?
हाँ नहीं नहीं आपने भी नहीं अभी
जी भाई पॉलिटिकली करेक्ट,
इसने रैंडमली मुझसे पूछा तो मैंने अभी जवाब दिया। तो मैं ये बात बोलूँ कि मेरे लिए इंस्पिरेशन, जब मैं म्यूजिक की फील्ड में होता था तो मेरे लिए म्यूजिक इंस्पिरेशन कोई और थे, बट ये के इन एनी केस यू नो, मैं हमेशा ये बात बोलूँ, देखिए अपने लिए बेंच मार्क हमेशा हाई रखा करें,
बिल्कुल,
देयर इज नो अदर बेंच मार्क हायर देन द बेंच मार्क ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इवन अमंग्स द प्रॉफिट्स, ला नफर्रिकु बैन अहद मिन रसूलिही, हम ऑफकोर्स फ़र्क नहीं करते, लेकिन अम्बिया में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि बेहतरीन इबादत करने वाले, तो हमारे लिए तो वो चीज़ नहीं है, तुम्हारे लिए अल्टीमेट है। मैं सवाल ये पूछा था कि बिकॉज हाउ आर वी एबल टू रिलेट टू अदर पीपल जो हमारे टाइम के क्लोज होते हैं, बट इन एनी केस, बट ये ऐसी क्या चीज़ है जो नई हो रही है आपकी ज़िंदगी में? मुझे पता ज़रीन की ज़िंदगी में तो
वो तो सबको पता है,
वो सबको पता है, सबको नहीं पता, पता नहीं,
कर लो ज़रीन को, कर लो आप लोग
जी जी, ज़रीन की बिस्मिल्लाह में शादी, लोग समझ रहे हैं शादी में बिस्मिल्लाह की बात कर रहे हैं,
बिस्मिल्लाह क्या होता है?
हाँ बिस्मिल्लाह कहते हैं ना, बच्चे कुरान पढ़ाना शुरू करते हैं लड्डू पे हाथ रखवा के, he's a minor, cringe, don't you dare, जी जी
वजी भाई, मेरी ज़िंदगी में एक जो काम जो मुझे लग रहा है फंसा हुआ ना, वो काम एक तो ये है कि मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ, जब से हज से वापस आया हूँ ना, तो आई हैव बीन ट्राइंग टू गो टू उमरा अगेन, तो मेरा वो काम ना किसी न किसी वजह से ना दोबारा से ना वो कहीं ना कहीं पे रुक जाता है, तो मैं नोटिस करता हूँ कहीं ना कहीं पे वो रुक जाता है, एक ये, उसके अलावा कुछ जो है ना वो
इम्प्रूवमेंट इस वजह से भी कि आप हम साथ साथ उमरे का प्लान बना लें,
हो सकता है, अल्लाह से बेस्ट ऑफ प्लानर्स,
ठीक है,
डेफिनेटली
शो के बाद बात करते हैं।
आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या नया चल रहा
है? भाई बस अभी मैंने इनरोल किया है खुद को,
बस वो पानी की मशीन खोलिए बंद करने का इरादा है
मैं अब नहीं दे रहा
पानी की मशीन खोलिए बस जी
बस वजी भाई दीन की पढ़ाई स्टार्ट की है अलहमदुल्ला, एक शेख से बात चल रही है, तो उनसे अब वन ऑन वन पढ़ाई जो है मशवरा किया था मैंने आपसे, तो वो स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज और डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं।
रुका हुआ गया है?
रुका हुआ नहीं था, ज़िंदगी में कुछ नया होने वाला सवाल था।
हाँ, क्या नया, क्या चीज़ नहीं हो रही है,
क्या चीज़ नहीं हो रही है?
हाँ, नहीं हो रही, आपने रुका हुआ के जवाब
दिया, आपने आपने नहीं मीन
सवाल सवाल समझना भी आधा एक,
हाँ सही बात, सवाल ठीक
है। अच्छा, केक का कौन सा फ्लेवर पसंद है?
चीज केक, चीज केक,
स्ट्रॉबेरी बोल रहे, चीज केक,
स्ट्रॉबेरी चीज केक,
आपका?
सेम, माय आंसर सेम,
ठीक है, आई एम नॉट मच ऑफ अ चॉकलेट गाय, मैं चॉकलेट्स कहता नहीं।
आपको कौन सा केक पसंद है?
मुझे वैसे तो केक इतना पसंद नहीं है लेकिन इन एनी केस अगर मुझे बोले स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या वनीला फ्लेवर कुछ भी डिफरेंट अदर देन चॉकलेट।
वजी भाई की फेवरेट चीज टू ईट इज फ्राइज, KFC के
फ्राइज मसाला क्रिप्टोनाइट है। अब मैंने जरा अच्छा नहीं, मैंने आई वुड गलत हो जाएगा कि मैंने बोला कि कम कर दिया, बट ये कि आई वुड हैव देम एवरी डे।
वजी भाई बहुत फ्राइज करते हैं, बहुत फ्राइज करते हैं, और KFC के मसाला फ्राइज मुझे पहली दफा ट्राई भी,
प्लीज स्पॉन्सर का नाम कट कर दीजिए,
हम बीप कर
देंगे, बीप कर दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? रो के बिस्तर पे बैठ के मैं अपने आप को वैसे दिखता हूँ कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, बट ये ऑन अ सीरियस नोट, हाउ डू यू स्टार्ट योर डे?
अपार्ट फ्रॉम जो बिल्कुल वाज़े चीज़ें नमाज वगैरह के अलावा अगर आप बात करें, तो मैं सबसे पहले जब उठता हूँ तो मुमी तौर पे मैं ये देखता हूँ कि छोटी गिरने तो नहीं वाली बिस्तर से
पहले मोबाइल को चार्ज पे लगाता हूँ
फिर मोबाइल को चार्ज पे लगाता हूँ या उतारता हूँ और फिर बाकी काम शुरू होता है।
सही,
ऑनेस्टली बताना है ऑब्वियसली मैं फिलहाल मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं सुबह उठ जाता हूँ 4 बजे के करीब, और उसके बाद थोड़ी देर मोबाइल
ऑफिस से घर जाता हूँ,
ऑफिस से घर जाता हूँ, उसके बाद मोबाइल थोड़ी देर स्क्रॉल करता हूँ, फिर कुछ काम जो होते हैं ईमेल्स वगैरह उनको चेक कर लेता हूँ, तो दिस इज व्हाट आई डू सुबह के बाद, अपार्ट फ्रॉम जो
आप दोनों को चेक करते
हैं, आई मेक श्योर दैट व्हेन आई वेक अप आई रीड सर्टेन दुआस कि मेरी शुरुआत हो कुछ दुआओं के साथ, और वो मैंने सोने से पहले या सोने उठने के बाद,
मसनून असगार के अलावा
मसनून असगार ही है जिसको शामिल किया हुआ है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, चाहे वो अगर किसी जल्दी की बिना पर अगर नहीं किया हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کی شروعات میں جو سب سے پہلی جو دعا ہے, اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کی شروعات ہوتی تو نماز جب شروع پڑھتے, تہجد کی نماز ہوتی ہے ہوتی تو سب سے پہلے 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے, 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے, پھر اس کے بعد 10 دفعہ الحمدللہ پڑھتے, پھر 10 دفعہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدی پڑھتے, پھر 10 دفعہ سبحان الملک القدوس پڑھتے, پھر بعد میں 10 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے, پھر 10 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتے, اور پھر یہ دعا 10 دفعہ پڑھتے, اللہم انی اعوذ بکا من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ, یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میرے لیے دنیا تنگ کر دی جائے اور آخرت تنگ کر دی جائے. اس کو 10 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور پھر جو ہے نماز کا باقی وہ شروعات کرتے.
اٹھتے ساتھ
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, جو سورہ آل عمران کی آخری آیات ہے, تو ان کو پڑھا جائے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وہ ہے, اور خالی عادتاً نہ پڑھی جائے بلکہ یہ ہے کہ
غور و فکر کے ساتھ
کی جائے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ کانورسیشن کر رہے ہیں, یا اللہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, یا اللہ تو نے جو بھی پیدا کیا ہے کسی بھی ایسی فضول میں پیدا نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور پھر آگے کی دعائیں ہیں. اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو,
میں سمجھ گیا آپ کی بات,
پر یہ کہ سب سے پہلے یہ کہ سب آپ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما ماتنا و الیہ النشور, کہ وہ بھی ایک موت کا ہی ہے. خیر چلیں, اب اسکول میں سب سے برے کس سبجیکٹ میں تھے آپ؟
سب سے برا کس سبجیکٹ میں تھا؟ اردو.
میں بھی اردو میں,
انیشلی اردو میں تھا, پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہت امپروو کر گیا تھا الحمد للہ.
آپ نے اردو بولا تو مجھے کچھ یاد آ گیا میرے اسکول کی, میں جب بچے میری کلاس میں انتظار کرتے تھے کہ اردو کی کلاس میں باری آئے ریڈنگ کرنے کی تو میری باری ہے, تاکہ سب بچے مل کے میری غلطیاں نکالیں, ٹھیک ہے. تو کہیں پہ وہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, کہیں پہ میں نے ایسی غلطیاں کرتا, مذکر مونث سے غلطیاں کرتا تھا. تو الحمدللہ میری اردو کی ریڈنگ بھی بہتر ہوئی جب میں دین کی طرف آیا, تو میں نے اردو کی کتاب پڑھنا شروع کی جان بوجھ کے تاکہ وہ ہو. بٹ اینی کیس
میری اردو ریڈنگ ابھی بھی فار سم ریزن, عربک ٹیکسٹ جو ہے میں پڑھ لیتا ہوں, اردو ریڈنگ میری بہت سلو ہے.
آپ کافی اسٹرگل کرتے ہیں انگلش میں بھی اردو میں بھی,
ہر سبجیکٹ میں, لیکن اردو میں اسپیشلی, اردو میں جو ہے میں بڑا بہت سلو رہتا ہوں.
اچھا,
پڑھ لیتا ہوں, نہیں کہ مجھے نہیں آتی, عربک زیادہ بہتر طریقے سے پڑھ لیتا ہوں.
کون سی سبجیکٹ میں آپ رہے؟ اردو میں. I think Urdu has been,
اصل میں آئی تھنک اسکول میں جو ہے وہ اردو کو اتنا اس طرح سے پڑھایا نہیں جاتا تھا, انفارچونیٹلی.
کچھ اسکولس میں کافی زور دیا جاتا ہے, بٹ آئی تھنک اتنی سلیس اور اتنی تمیز والی اور اتنی رچ زبان ہے.
میں نے, میں اگر پرسنلی بات کروں تو جب تک 5th-6th کلاس میں تھے تو اس وقت زیادہ اسٹرگل کیا, جیسے جیسے بڑھتے گئے آگے نکلتے گئے تو الحمد للہ اس کے بعد امپروومنٹ ایسی تو ہوئی.
کیا بولتے ہیں؟
something نگاری, something کچھ اس طرح سے ہے نا, کیا تصویر نگار,
تصویر نگار. ایک اور تھا بڑا اچھا تھا,
فریج.
نہیں, کچھ ورڈ ہوتے ہیں جن کی ہوتی نہیں ہے نا اردو میں,
نہیں ہوتی,
انوینشن نہیں ہے نا اردو ورڈ ہی نہیں. فریج کو اردو میں فریج ہی بولیں گے,
ٹی وی کو بولتے ہیں کچھ. میں نے ہندی کا ٹی وی کا ورڈ سنا تھا.
آپ کو پتا ہے فارسی میں دیر از ہول کمیٹی, جب کوئی نئی چیز آتی ہے نا تو وہ اس کے لیے ورڈ بناتے ہیں.
وی نیڈ دس,
اس میں ضرور ہونا چاہیے.
عربی کے لیے ایک مکالمہ لکھنا تھا, تو میں مشائخ کے ساتھ کلاس میں پڑھا تھا, انہوں نے بولا, تو نیا گیا تھا تو انہوں نے لکھنے کے لیے بولا. تو دو قصے ہیں نا, فنی قصہ ہے کہ میری اردو کی, سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ شیخ پڑھا رہے تھے مسجد میں, تو وہ نحو پڑھا رہے تھے تو اب وہ انہوں نے, اچھا ان کا اسٹائل یہ تھا کہ انہوں نے بولا تھا کہ میں آپ کو ڈکٹیٹ کراؤں گا اپنے لکھنا ہے,
ٹھیک ہے.
تو میں نے بولا چلے یار لکھنا ہے یار, وہ جرنل انہوں نے لکھ کے آتے تھے وہ وغیرہ لکھوا. تو نحو کی تعریف بتائی انہوں نے, تو جو ہے نا کہ جو اسم فعل اور حرف بنے تو اس سے جو ہے نا کالی ماں بنتا ہے. اور میں لکھ رہا ہوں تو اسے, میں نے کالی ماں, کالی ماں کہاں سے آ گیا یہاں پہ؟ میں نے بولا یار بچی ٹائم نہیں ہے, لکھ بس. میں نے کالی ماں, پتا چلا وہ کہہ رہے تھے کالی ماں. मैंने काली माँ कहाँ से, अब मैं गाड़ी में, मैं और मेरे दोस्त बैठ के हंस रहे तो उसको काली माँ कहते हैं, मैंने काली माँ कहाँ से आ गया यहाँ,
असल में शेख
मस्जिद में बैठे हैं,
काली माँ हाँ, असल में इतना
काली माँ कहते हैं,
शयूख जो होते हैं ना वो भी उनका भी एक्सेंट जो होता है ना उर्दू का, स्पोकन उर्दू बड़ी ऑफ होती है,
काली माँ होती
है, ऑल जनरलाइजेशंस
आर रॉन्ग, अरबी अरबी में लिखना पड़ा,
जनरलाइजेशंस
एक दफा अरबी में लिखना पड़ा तो शेख ने बोला कि जना के लिखें, तो जामिया में थे तो लिखना शुरू हुए, तो मुझे एक वर्ड नहीं आया, जैसे आपने पूछा ना कि अंग्रेज़ी का वर्ड नहीं आया, तो मैंने बोला यार अरबी में पे तो होता नहीं है, ठीक है तो भ होगा, तो मैंने उस अंग्रेज़ी के वर्ड को जो ना अरबी में करके जो ना मैंने यूँ जो ना कि क्या रेफ्रिजरेटर ऐसी कुछ कर दिया, शेख ने देखा उनकी भी हंसी निकली, मेरी भी निकली, मैंने भी देखा उनको कुछ, किसी ने कुछ, दोनों ने कुछ बोला नहीं, उम्मीद कर रहे कि हंसे, मैंने
It is what it is.
मैंने बोला तो यार क्या बोलू, नहीं आ रहा मुझे वर्ड बोला
जिस राजेश राम किताबचा को पढ़ते थे
किताबचा
चले लास्ट क्वेश्चन, व्हाट स्केयर्स यू द मोस्ट, किस चीज आपको ज्यादा डर लगता है?
समंदर दिस इज, आपने कहा जल्दी जल्दी बताना है,
देने का तो बताया हमें
आपका जवाब
नहीं
नहीं
मेरा भी समंदर है, मुझे समंदर की गहराई और उसमें जो क्रिएचर्स हैं अल्लाह सुबहान ताला के, मतलब बचपन में हमने कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी जिसमें हमें बताया गया था कि सी हॉर्स के नाम से एक क्रिएचर होती है जो बहुत बड़ी होती है, उसके बाद से मुझे बड़ा फोबिया है समंदर का, और हाइट्स का भी फोबिया।
सी हॉर्स छोटा सा होता है यार।
नहीं, सी हॉर्स बेसिकली वो मूवी थी आई गेस, बचपन में देखी थी, तो बड़ा होता जाता है और टू द पॉइंट बहुत बड़ा हो जाता है, समंदर के बीच में मैं सोचता हूँ कि मैं होऊंगा और नीचे से कोई चीज़ निकलेगी। और
आपका मूवी की वजह से या इस वजह से बचपन के एक्सपीरियंस है मुझे, इसलिए क्योंकि आई हैव हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस समंदर में, और मैं आई हैड गिवन अप, मैंने कहा क्या, और फ्लैशबैक्स जो है ना वो सब कुछ चल गए थे, मैंने जहन में चला लिया था, मैंने अपनी तरह सोच लिया था मैं तो क्या, फिर अल्लाह सुब्हान ने पता नहीं कैसे बचा लिया, और सुभान अल्लाह जिस बंदे का मजाक उड़ा रहे थे ना जब वहाँ पहुँच के, मैं बचपन की बात कर रहा हूँ बाय द वे जस्ट डिस्क्लेमर, जिस बंदे का मजाक उड़ा रहे थे यार ये नहीं बचा सकता, ये कैसे स्विमिंग करेगा, उसी ने आगे बचाया, और फिर जब मैं आगे साहिल के ऊपर ऐसे लेटा हुआ था और पानी निकाला मेरे अंदर से, देखा मुझे आसमान देखा, मैंने कहा लगता है गए
वो समंदर से पर्ची आई होगी, अपना कचरा अपने पास रखो यहाँ नहीं देखा करो,
आज मजी भाई तो प्री वर्कआउट लेके आए, आज प्री वर्कआउट लेके आए मजी भाई, और वर्कआउट नहीं कर पाए,
प्री वर्कआउट नहीं, कॉपी बहुत बुरी थी जरीन ने बनाई, आई थिंक शेयर डालना भूल गया आप, उसमें
शेयर डाला था मैंने,
आई डोंट नो, थोड़ा सा डाला
था, चल गया,
अच्छा आई थिंक इट वाज अ गुड राउंड, जस्ट लाइक बीइंग एबल टू हैव इट, आई वुड से अगर आप मुझसे पूछे ना कि व्हाट स्केयर्स मी द मोस्ट, या मेरा सबसे बड़ा डर जो है,
वाइफ
नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं,
इसका मतलब वो पॉडकास्ट नहीं देखती, जो
नहीं आई थिंक अगर मैं सोचूं तो मे बी शायद टू अ सर्टेन पॉइंट हाइट, ऑल्दो मतलब एक पॉइंट रहा है बचपने में, मतलब हाइट हैज़ नॉट बीन एन इशू, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मे बी शायद मेरा फियर ये है कि औलाद का यू नो रास्ते से गलत रास्ते पे चलना शायद ये है, मे बी शायद लूजिंग माय पेरेंट्स, माय फियर इज़ मे बी अगर मैं अपनी बात करूँ माय ओन सेल्फ, नोइंग के मैं कुछ सिचुएशन में खुद कैसा हूँ, शायद मैं अपने आप को नहीं जानता, यू नो द फियर ऑफ मी नॉट बीइंग सिंसियर टू अल्लाह एंड फाइंडिंग इट आउट माई सेल्फ कि मैं खुद कैसा हूँ अल्लाह ताला के मामले में, कि उस सिचुएशन में इंसान के खुद, तो आई वुडन्ट से कि कोई डर है, एंड देर इज़ नो फियर जो मैं ज़ाती तौर पर मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैं उसको ओवरकम नहीं किया हो और नहीं करने के लिए तैयार ना हो, बट एवरी अगर मैं स्केयर के या फियर के बारे में तो इट्स मोर ऑफ अ फियर नॉट अ स्केयर, बड़े के
जी भाई आपने सारे सवालों के जवाब ना सोच समझ के और बड़े जो है ना वो
मजी भाई ने खुद लिखे ना
फिलोसॉफिकल
नहीं नहीं सोचने की जरूरत नहीं, यू नो रैंडमली बोल रहा हूँ तो आपने बोला तो मैंने उस वक्त जवाब बोला, बट यू नो जब आप बोल रहे हैं तो मैं यू नो व्हेन आई एम लुकिंग ऑन माय लेफ्ट साइड तो दिस मींस आई एम थिंकिंग राइट नाउ पेरिस हो जाता तो मैं थर्ड नहीं रहता चले तो हम बात कर रहे थे प्रोडक्टिव
हैबिट्स नोट डाला था लुक एट योर लेफ्ट साइड व्हाइल सेइंग दिस थिंग
लाइक दिस आई एम एक्चुअली यू नो शायद राइट साइड पे देख रहे हो तो झूठ बोल रहा होता है या लेफ्ट साइड पे देख रहे हो तो सच बोल रहा होता है
जब आप राइट टॉप पे देखते हो तो आप अपने मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते हो और जब आप लेफ्ट टॉप पे देखते हो तो दैट मींस यू आर crafting something दिमाग में कोई चीज प्रोसेस कर रहे हैं
मैं लेफ्ट देख रहा था पता नहीं जजमेंट
आप सोच रहे थे पर बना रहे थे
सो आप सोच रहे थे
सोच रहा था बट यानी कि चले आई थिंक हैबिट्स आर हम अगर ऑडियंस को बोलना चाहें आई थिंक वी कैन रैप इट अप ठीक है सो लाइक आखिरी बातें क्या बोलेंगे आप बीइंग एबल टू हैव गुड हैबिट्स
मुझे भी मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो बंदा अगर वाकई सीरियस है ना अपनी हैबिट्स को चेंज करने के बारे में देर इज़ अ लॉट दैट कुड बी सेड एंड डन बहुत सारे उसके तरीक़ेकार हैं जैसे ये हमने बुक का जिक्र किया आप ये अगर बुक पढ़ते हैं तो आप हैबिट्स डेवलप करने के लिए आप बात करें तो आप जो अपनी बैड हैबिट्स हैं इसका बिल्कुल उल्टा करते जाएँ मिसाल के तौर पर अगर आपने रास्ते आसान बनाते जाने हैं अपनी अच्छी हैबिट के लिए तो आप बुरी हैबिट के लिए अपने रास्ते मुश्किल बनाते जाएँ गुनाह के रास्ते बंद करते जाएँ और इसी तरह एक और चीज़ जो मैं सोच रहा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे मामले के अंदर वो ये है कि अपना जो है ना वो एक अकाउंटेबिलिटी बड़ी होना चाहिए हर बंदे का जो कि बंदा जिसके साथ आप बातें शेयर करें और आइडियली अगर आप मैरिड हैं सॉरी ब्रो अगर आप मैरिड हैं तो आप जो है ना वो अपनी वाइफ को जो है ना वो अपना अकाउंटेबिलिटी बड्डी बनाएं मैंने ये देखा है कि इससे बहुत फ़ायदा होता है इससे फायदा ये होता है कि अपनी वाइफ को बता दें आपकी जिम्मेदारी है आपने मुझे ये काम नहीं करने देना
जी भाई तो
जैसे किसी ने एडवाइस
दी मिलते
कि जो ना कि जब भी शादी हो तो मेरी एडवाइस ये है कि पहले दिन ये ना बोला कि आप मेरे में कोई कमी बेशी देखे तो मुझे बता दें क्योंकि वो इतनी बताई जाएगी कि फिर आपके जवाब बोलेंगे मैंने क्यों बोला ये अच्छा, आप अकाउंटेबिलिटी बड़ी बनाने की बात कर रहे हैं अकाउंटेबल बड़ी बनाने की बात कर रहे हैं आपको अकाउंटेबिलिटी तो वैसे ही बनेगी आपको
अच्छा आपको पता है ये बात वजी भाई की शादी के कुछ अर्से बाद इन्होंने हमारा वो जो कुछ घंटों का वन ऑन वन सेशन होता था ना हार्ट टू हार्ट उसमें वजी भाई ना कि मुझे एडवाइस की जरिए एक बात बता
ये मेरी नहीं थी
आपने बताई थी
मुझे मेरी नहीं है आप भूल रहे हैं ये किसी और स्पीकर ने कहा है वाईसी के
आपने मुझे
नहीं ये मेरी नहीं मैं आपको बता रहा हूँ मैं नाम नहीं ले सकता उन्होंने ये बात बोली है
बताइए
मैं नाम नहीं ले सकता ना नहीं ले सकता ना
नहीं वजी भाई ने मुझे एडवाइस
ये मेरी एडवाइस नहीं है ये मैं क्योंकि मैंने ये किया ही नहीं मैं तो मैं क्यों बोलूं
आगे ले
बात ये डर देख रहा
नहीं नहीं मैं डर नहीं मैं बता रहा हूं ये तो मैंने किया ही नहीं ये एडवाइस किसी और स्पीकर की थी
मानना पड़ेगा भाई अगर देख रहे हैं आपकी वाइफ तो
मुझे याद आ गया
ना आप मेरे पे डाल रहे हो
आपने मुझे
लाहौर से ताल्लुक है लेकिन ये आप मेरे पे नहीं डालिए ये मेरा नहीं
वजी भाई सोच रही हो वजी भाई बैठे वजी भाई ने मुझे कुछ पॉइंट्स बताए थे वो मैं बताऊंगा नहीं पता नहीं वजी भाई के लिए लाइफ एंड डेथ सिचुएशन ना हो
जाए लाइफ डिसीजन अल्हम्दुलिल्लाह माय वाइफ हैज बीन वेरी सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह एंड बियॉन्ड हर यूजुअल्स जो उनकी पॉसिबिलिटी होती है एंड आई वुड से कि देखिए आप हम सबको देख रहे होते हैं काम करते हुए इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट योर स्पाउस कॉम्प्रोमाइजिंग जब तक वो अपना पर्सनल टाइम कॉम्प्रोमाइज ना करे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजवाज मुतहरत थीं वो भी अपना कॉम्प्रोमाइज़ करती थीं फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुबहाना व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी पॉसिबल नहीं होता उनके लिए काम करना अगर वाइफ्स की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बताती हैं कि चाँद की फुल मून की कितनी फेजेस आ जाते हैं लेकिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था तो जो वाइफ्स की सपोर्ट है ये बहुत मैटर करती है मैं सुकून में नहीं रहूँगा मैं इसका काम में सही तरीके से नहीं काम कर सकता क्योंकि ऑलरेडी दावत के काम में आपने बहुत सी नेगेटिविटीज़ क्रिटिसिज्म और उल्टी सीधे बर्दाश्त करनी पड़ती है सो व्हेन यू गो होम एंड यू स्पीक टू योर वाइफ एंड यू नो दैट शी इज़ बीन टेकिंग केयर ऑफ़ द किड्स फॉर यू टू बी एबल टू कम एंड अपना भी इनपुट डालें एंड घर का ख्याल है एंड चीज़ें हैं एंड आप उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर ले जाते हो हज़ार चीज़ें तो इट इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग फॉर अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बस बुरी नज़र से बचाए और अल्लाह ताला मज़ीद बरकत डाले हम सब के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला सब के लिए करे तो आई थिंक दिस इज
अगर आपका वजीब घर अगर ठीक ना हो ना आपकी फैमिली लाइफ अगर दुरुस्त ना हो बंदे की
आप दीन के लिए
काम
कर आप दुनिया के काम कर सकते
हैं कोई काम नहीं कर सकते आपकी सैनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है बंदे की अगर आपके घर में मसाइल चल रहे हैं तो बंदे की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है एंड ट्रूली जो लोग वाकई जिनके घर वाले अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे ख्याल से हमारा ज़्यादा क्रेडिट नहीं जाता किसी कोई भी काम हम कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें चूज़ किया है किसी काम के लिए, ये ज़्यादा क्रेडिट हमारे घर वालों को जाता है जो पता नहीं कितनी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि यार चलो वो अगर दीन का ये काम कर रहा है तो लेट्स नॉट डिस्टर्ब हिम, करने दो उसको। तो दिस इज़ अ बिग
अच्छा दाई भी कहते हैं ना कि नेगेटिव हो सकता है अगर उसको घर से सुकून ना मिले।
डेफिनेटली।
बट इन एनी केस लास्ट एडवाइस आप क्या देंगे?
जी वजी भाई मैं वो बातें नहीं करूँगा जो आपने और हैदर भाई ने ऑलरेडी मेंशन की। मैं बस एक आर्टिकल पढ़ रहा था बाय अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की तरफ से था, वो ये था कि द मोस्ट प्रोडक्टिव इमोशन दैट वन कैन हैव इज ग्रेटिट्यूड। हैबिट तो हम ब्रेक करेंगे उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कंसिस्टेंट किस तरह से रहना है। ग्रेटिट्यूड दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, सीईओज हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, इन सब की लाइफ को स्टडी किया गया और देखा गया कि उनमें क्या ऐसी चीज़ कॉमन है जो ये सब करते हैं जो इनको सक्सेसफुल बनाती है, वो ट्रेड्स क्या हैं, वो क्वालिटीज़ क्या हैं। तो पांच चीज़ें सब में कॉमन थी और सुभान अल्लाह अगर इफ़ यू थिंक अबाउट देम इस्लाम ने वो चीज़ें आपको पहले बता दी। पहली चीज़ थी दे वेक अप सुपर अर्ली एंड वंस दे आर अवेक दे मेडिटेट, ठीक है, नमाज कह लें आप, वट कुड बी बेटर, तहज्जुद नमाज, ठीक है। उसके बाद दे रीड मोटिवेशनल टेक्स्ट, वेदर इट बी अ कोट अ बुक एनीथिंग टू कीप देम यू नो इंस्पायर्ड, उस दिन के लिए उनको इंस्पायर करें। एंड वट कुड बी मोर इंस्पायरिंग देन द वर्ड ऑफ अल्लाह, कुरान की कुछ आयात पढ़ लें तर्जुमे के साथ। एंड देन देर वॉज ग्रेटिट्यूड था, शुक्र करते हैं फॉर द थिंग्स दे हैव एंड दे स्टार्ट ऑन विद देयर डे। और जो अस्कार होते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, आप अल्लाह सुबहाना ताला से शुक्र अदा करते हैं, आप अल्लाह सुबहाना ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तेरा लाखों करोड़ों बार शुक्र फॉर व्हाट आई हैव और अल्लाह ताला ग्रांट मी दिस दैट, हर जायज़ आप अपनी ख्वाहिश मांगते हैं। एंड द फिफ्थ वॉज दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, तो इस्लाम ऑफ देयर बॉडी एंड मेंटल हेल्थ, तो इस्लाम भी आपको कहता है कि आप योर बॉडी हैज़ अ राइट ओवर यू। तो इस्लाम इज़ अ रिलीजन एंड देयर इज़ नो अदर रिलीजन लाइक दैट, no other religion. Islam ek aisa religion hai which is built to make you successful in this dunya and hereafter, not only in this dunya but hereafter. To agar hum ye dekhein ye kuch qualities hain jo hum Allah ke liye kare aur indeed Allah subhanahu wa taala jo hai phir jo cheez hum Allah ke liye karenge wo kabhi zaya nahi jayegi, Allah subhanahu wa taala behtareen nazar denge.
Mashallah, achhi baat kahi aapne. Aur लाइक अगेन जो फजर की नमाज़ पढ़ता है वो अल्लाह सुबहाना ताला की ज़िम्मेदारी में होता है। एंड अपनी ज़िंदगी में कुरान नॉट एज़ अ रिचुअल, नॉट एज अ हैबिट, बट कुरान से अपनी ज़िंदगी और दिन की शुरुआत के लिए कोई ना कोई लेसन, इट कैन बी कि अल्लाह सुबहाना ताला कुरान में जब इनाम याफ्ता लोगों के स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हैं, कुफ्फार की नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं, इवन अल्लाह की ज़ात की नाशुक्री की बात करते हैं, तो आप यू नो यू आपको एक लेसन मिलता है कि यार जब अल्लाह का अल्लाह की कदर करने नहीं की इन्होंने, अल्लाह की परफेक्ट ज़ात की नहीं की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनालिटी थी उसकी कदर नहीं की, तो देन और कौन कहाँ स्टैंड करता है। तो आपको एक 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 रियलिटी चेक मिल जाता है एंड इट ऑल्सो गिव्स यू दैट स्पिरिचुअल थिंग। जैसे इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते थे कि ये सुबह के अस्कार मेरा नाश्ता है, अगर मैं अपनी ताकत और अपने लिए प्रोटेक्टिव शील्ड ना करूं तो फिर मेरी शैतान के लिए बहुत आसान हो जाएगा मुझे गुमराह करना। हम लोगों को ये बोलते हैं कि देखिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो आप लेके आ सकते हैं अपने आप को जानने के लिए कि आप अपने खालिक को पहचानें, अपने खालिक के बारे में अच्छा गुमान रखें और आपको अपनी खुद की लिमिटेशन से हटकर जब अपने रब की ताकत का पता होगा तो आपको पता होगा कि यार इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट बिकॉज ऑफ मी, मेरा रब जो है मेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई चेंज लेके आ सकता है। अपने आसपास माहौल ऐसा लेके आइए जो आपको अच्छाई की तरफ लेकर आए, मोटिवेट करे, माहौल से बहुत फ़र्क पड़ता है। और जैसे आपने भी कहा यू हैव टू लव योर सेल्फ, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया को आप कुछ प्यार दें, अपने आसपास लोगों को प्यार दें, तो उसके लिए आपको अपनी ज़ात से प्यार करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप अपने आप से नफरत करते हैं तो आप दूसरों को क्या प्यार देंगे।
और आप अपनी
डेवलपमेंट में ख्याल रखें और हमेशा बात करते हैं, देखिए इन्वेस्ट कीजिए, रीड कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। एंड ट्राई एंड स्लोली बिल्ड ऑन सर्टन हैबिट्स. ऐसी चीज़ लेकर आइए जो आपकी ज़िंदगी में अच्छे आदत और अच्छे प्रोडक्टिव हैबिट्स को लेकर आए, बिकॉज दे विल शेप यू इन टू अ पर्सनैलिटी. और तीन साल में आप कहाँ होंगे या आप खुद डिफरेंस देख लेंगे. तो अब छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेके आइए. सो दिस वॉज आवर शो फॉर टुडे. आई होप आपको पसंद आया हो. अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा इंशाल्लाह ताला. और अगर आपको फ़ायदेमंद लगा है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा. अपना ख़ास ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्राइडे को मुलाकात होगी एज़ यूजुअल बिज़्निल्लाह ताला, अल्लाह ताला के हुक्म से, विद अनदर टॉपिक. सो सी यू गाइस सून. टेक केयर एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इस तरह के और मजीद वीडियोस पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट के साथ. क्लिक ऑन द पेट्रियन लिंक एंड सपोर्ट अस नाउ.